नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को IACRT भारत उपमहाद्वीप पुरस्कार 2025 सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से रह रही दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। और राज्य में ग्लेशियर झीलों का होगा अध्ययन। पिथौरागढ़ की दो झीलों के अध्ययन के लिए 20 सितंबर को देहरादून से होगी दो टीमें रवाना। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को ICRT भारत उपमहाद्वीप पुरस्कार 2025 का सिल्वर अवार्ड मिला है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह प्रदेश की नीतियों और पहलों की सफलता का परिणाम है। नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में आयोजित ICRT भारतीय उपमहाद्वीप जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार 2025 और BLTM व्यापार शो में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन से विशेष तौर पर स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए पर्यटन विकास पर जोर दिया। श्री महाराज ने बताया कि उत्तराखंड में ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे योजना और पर्यावरण संरक्षण आधारित नीतियों से एक सतत पर्यटन मॉडल तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड पर्यटन और ICRT इंडिया फाउंडेशन के बीच जिम्मेदार पर्यटन साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल शाम राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में तीमारदारों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि वेटिंग एरिया में पेयजल, पंखे और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और रंगरोगन की व्यवस्था तत्काल करने को कहा। के दौरान मुख्यमंत्री रक्त नमूना संग्रह केंद्र भी पहुंचे और वहां की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेल्प डेस्क का भी जायजा लिया और लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और हेल्प डेस्क पर आने वाले लोगों को स्पष्ट व त्वरित जानकारी दी जाए। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान के वैज्ञानिकों ने मेथा उत्पादन के लिए खरीफ मिंट तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से असिंचित क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा मिलेगा, सिंचाई की खपत कम होगी और वर्ष भर में तीन फसलें ली जा सकेंगी। सीमैप के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राकेश उपाध्याय ने बताया कि प्लॉटिंग मटीरियल के तौर पर जड़ों की जगह पौधे के ऊपरी हिस्से का उपयोग किया जाएगा और इसे हाई डेंसिटी पॉलीटनल में लगाया जाएगा। इस तकनीक से प्रति हेक्टेयर 150 से 180 लीटर मेथनॉल का उत्पादन होगा और लागत कम होने से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
अभी तक मेंथा खेती जो है, किसकी खेती जो पहले होती थी फरवरी से लेके जो है मई जून तक खेती होती थी, जिसमें बहुत ही अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती थी, लगभग 15 सिंचाई जो है चार महीने के अंदर। भूजल दोहन भी बहुत ही उच्च स्तर होता था, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने लगभग 10 साल के अथक प्रयास से किया और आज की डेट में हम लोगों ने मेंथा की खरीफ मिंट टेक्नोलॉजी विकसित कर दिया है, जिसकी खेती बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में ही किसान भाई करके अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। इसमें किसान भाई मेंथा की फसल जून जुलाई में लगाकर के अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी जो उपज मिलती है वो जो गर्मी वाली फसल थी उससे बराबर ही मिल रही है। ऊपर से उनका जो सिंचाई की लागत थी वो बहुत ही कम हो गई, लगभग सिंचाई लागत में 60% कमी आ गई।
गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे। गृह मंत्री ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। 16-17 सितम्बर को आयोजित होने वाले सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भी शामिल होंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
पुलिस और खुफिया विभाग की संयुक्त टीम ने देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के पूजा विहार चंद्रबनी इलाके से अवैध रूप से रह रही दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने पश्चिम बंगाल सीमा से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने की बात स्वीकार की। उनके पास बांग्लादेशी पहचान पत्र और परिवार रजिस्टर भी बरामद हुए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि दोनों महिलाओं को नियमानुसार निर्वासित किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में भी देहरादून से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया गया है और 7 के खिलाफ अभियोग दर्ज कर जेल भेजा गया था। पिथौरागढ़ जिले में 2 ग्लेशियर आधारित झीलों के अध्ययन के लिए देहरादून से एक टीम 20 सितंबर को रवाना होगी। इस टीम ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में ग्लेशियर आधारित झीलों का अध्ययन शुरू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पिथौरागढ़ से होगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बारिश हुई है और राज्य को धराली और थराली जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ा। सचिव ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुकी केंद्रीय टीम अब केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। क्षति के आंकलन के बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि हिंदी केवल मातृभाषा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का आधार है। हिंदी ने देश की एकता को मजबूत करने के साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को नई ऊंचाइयां दी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वो हिंदी को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान दें। हिंदी दिवस पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक भावनाओं और आदर्शों का प्रतीक है। ये केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता की पहचान है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि हिंदी दिवस पर सभी लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकतम प्रयोग का संकल्प लें और इसके गौरव को बनाए रखने में सहयोग करें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विशेष व्याख्यान कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर नवीशचंद्र लोहली ने इसका शुभारंभ किया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है और हिंदी वेबसाइट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि अब वेबसाइट द्विभाषी होगी और छात्रों को मातृभाषा में सेवाएं मिल सकेंगी। पहले चरण में होमपेज, प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े निर्देश और विश्वविद्यालय संबंधी जानकारी हिंदी में उपलब्ध कराई गई है। दूसरे चरण में प्रवेश परीक्षा आवेदन, परिणाम, प्रमाण पत्र और छात्र सहायता सेवाएं भी हिंदी में उपलब्ध होंगी। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली पर जीएसटी सुधारों को की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद द्वारा आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई घरेलू वस्तुओं पर कर दरों में कटौती के साथ उनका ये सपना साकार हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी वस्तुओं के लिए किए गए सुधारों पर।
नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने विद्यार्थियों और परिवारों पर बोझ कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए ढांचे के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, रबड़, पेंसिल, क्रेयॉन, शार्पनर, सभी प्रकार के चार्ट्स, मैप, एटलस और ग्लोब जैसी स्टेशनरी वस्तुओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्सेस और कागज या पेपर बोर्ड से बने बॉक्सेस पर 12% का स्लैब घटाकर 5% का स्लैब लगाया जाएगा। इन वस्तुओं पर जीएसटी में कमी से परिवारों और विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे शिक्षण सामग्री की लागत कम होगी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को आईसीआरटी भारत उपमहाद्वीप पुरस्कार 2025 सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। पुलिस ने देहरादून में अवैध रूप से रह रही दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया और राज्य में ग्लेशियर झीलों का होगा अध्ययन। पिथौरागढ़ की 2 झीलों के अध्ययन के लिए 20 सितंबर को देहरादून से रवाना होगी टीम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।